नमस्कार भारत 21 मार्च मंगलवार, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस की भूमिका पर हो रही है जांच, एफबीआई ने की पुष्टि।
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence...
पाकिस्तान गए भारत के लापता उलेमा सुरक्षित वापस वतन लौटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद ने नहीं दिया था टिकट, क्या हो सकती है वजह?
वो स्वाभिमानी थे मगर बहुत संकोची, कुछ आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनका अंतर्मुखी स्वभाव बहुत बार मार्ग में आड़े आता था।
आदित्यनाथ देश के युवाओं तक अपनी पैठ कैसे बना सकते हैं, सुनिएगा एड गुरु पीयूष पांडे की सलाह। साथ ही खास रिपोर्ट, कश्मीर के संगीत पर पड़े राजनीतिक हालात के असर पर। लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने पहली बार माना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार और रूस के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। एफबीआई निदेशक जेम्स कूमी ने कांग्रेस की इंटेलिजेंस समिति के सामने ये बात कही। एफबीआई ने यह भी कहा कि उसे अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ओबामा प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के फोन टैप कराए हैं। फ्रांस में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई पहली टेलीविजन बहस में 5 मुख्य उम्मीदवारों ने अपने अपने एजेंडे को सामने रखा। मध्य दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्रांसवा फियो ने कहा कि उनकी प्राथमिकता फ्रांस को आर्थिक ताकत बनाने की होगी, तो वहीं उदारवादी नेता इमानुएल मैक्रों ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी फ्रांस के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने की। दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन ने कहा कि फ्रांस को बहुसंस्कृतिवाद पर अंकुश लगाना होगा।
Quant à l'intégrité du territoire, il est urgent.
ये बहुत अहम है कि फ्रांस अपनी मौलिक पहचान को कायम रखे और अपनी सीमाओं की मुस्तैदी से हिफाजत करे ताकि हम इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावशाली तरीके से निपट सकें। इस्लामिक कट्टरपंथ हमारे लोगों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हमें भौगोलिकरण के इस दौर में एकजुट होकर बहुसंस्कृतिवाद के खिलाफ खड़े होना ही होगा। ये थी फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मेरीन ले पेन। फ्रांस में अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि उसके आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के प्रवक्ता ने कहा कि अगले बुधवार को इस संबंध में संधि के अनुच्छेद 50 के तहत इसकी शुरुआत होगी। यूरोपीय कमीशन के प्रवक्ता मार्गरीटस शिनास ने कहा,
Yes, we have been informed in advance. We are ready.
हाँ, हमें सूचना मिल चुकी है कि ब्रेक्सिट की प्रक्रिया कब शुरू होगी। हम समझौते की शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से सब कुछ तैयार है। ये थे यूरोपियन कमीशन के प्रवक्ता मार्गरीटस शिनास। ब्रेक्सिट की प्रक्रिया ब्रिटेन में जनमत संग्रह होने के 9 महीने बाद शुरू हो रही है, जिसमें 51.9% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया था। जर्मन चांसलर एंगेला मैर्कल ने तुर्की के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि वो जर्मन अधिकारियों की नाजियों से तुलना बंद करें। चांसलर मैर्कल ने कहा कि अगर राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोवान ऐसा करना बंद नहीं करते तो तुर्क नेताओं के और प्रचार कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई जा सकती है। जर्मन अधिकारियों ने तुर्क वोटरों को लुभाने के लिए जर्मनी में की जा रही रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति तैयब अपने अधिकारों को बढ़ाने की मंजूरी के लिए होने वाले जनमत संग्रह के लिए तुर्क मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में राष्ट्रपति बशर अल असद के सैनिकों का विद्रोहियों के साथ कड़ा संघर्ष चल रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि विद्रोहियों के अचानक हमले के बाद शहर पर गोला बारूद और रॉकेट से हमले हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में अभियुक्त 5 खिलाड़ियों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अस्थायी रूप से इन 5 खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया था। ये 5 खिलाड़ी हैं शर्जील खान, खालिद लतीफ़, मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और नासिर जमशेद। इन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने से रोक दिया गया है। इन खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप लगे हैं। कैबिनेट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को लागू करने के लिए 4 नए कानूनों को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार की मंशा है कि इस साल 1 जुलाई तक GST को लागू करना है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत। बीबीसी रेडियो पर मंगलवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखलंदाजी की जांच हो रही है। पहली बार अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने यह बात मानी है। अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उनकी जीत में रूस की कोई भूमिका रही है, लेकिन एफबीआई के इस बयान को इस मामले में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। पूरे ब्यौरे के साथ प्रभात पांडे।
जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्हें चुनौतियों से लगातार जूझना पड़ रहा है। पहले मुसलमानों को लेकर उनके बयानों की चारों तरफ आलोचना हुई और प्रदर्शन भी हुए, उसके बाद उनको जिताने में रूसी दखलंदाजी की भूमिका की चर्चा। सोमवार को एफबीआई निदेशक जेम्स कूमी और एनएसए प्रमुख एडमिरल माइक रॉजर्स अमरीकी संसद यानी कांग्रेस की इंटेलिजेंस समिति के सामने बयान दे रहे थे। उन्होंने माना कि 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी भूमिका की जांच हो रही है।
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence,
न्याय विभाग ने मुझे ये पुष्टि करने का अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की जांच चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग से जुड़े किसी व्यक्ति के क्या रूस की सरकार से कोई संबंध थे, इस बात की भी जांच चल रही है। जांच के दायरे में ये बात भी है कि अगर रूसी दखल हुआ है तो क्या इसके तहत किसी तरह के अपराध को अंजाम दिया गया है। ये थे एफबीआई निदेशक जेम्स कूमी के शब्द। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाए थे कि ओबामा प्रशासन ने उनके फोन टैप कराए, लेकिन एफबीआई ने कहा कि बारीकी से पड़ताल करने के बाद उन्हें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुनवाई में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी के एरिक स्वालवेल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से सिर्फ रूस को ही फायदा पहुंचेगा। हमारे चुनाव में सेंध मारकर रूस हमारे देश को तोड़ने की कोशिश में कामयाब रहा है। अब हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि अपने सिस्टम को इतना मजबूत करें कि रूस या उसके जैसे ही क्षमता वाले हमारे दूसरे विरोधी आगे से ऐसा ना कर सकें। डेमोक्रेटिक पार्टी के एरिक स्वालवेल के शब्द। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को विच हंट यानी जानबूझकर परेशान करने वाली कार्रवाई कहा है और उनकी कैंपेन और कथित रूसी दखल के आरोपों को खारिज किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कहा कि सदन में दोनों ही पक्षों के कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी नहीं हुई है।
Investigating it and having proof of it are two different things. You look at the acting Obama CIA director said that there is smoke, but there is no
fire. जांच करना और सबूत मिलना दोनों अलग-अलग बातें हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान CIA निदेशक ने कहा था कि धुआं तो जरूर है, लेकिन आग नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन हो या नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक हो या फिर डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कून्स ही क्यों ना हो, इन सभी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि रूस ने चुनाव में किसी भी तरह का दखल दिया है। आप ऐसी चीज की जांच कर रहे हो जो किसी ने देखी ही नहीं या जिसके अब तक कोई सबूत ही नहीं पाए गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर के शब्द। जनवरी में अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि रूस समर्थित हैकर्स ने वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं के ईमेल हैक किए और हिलरी क्लिंटन को हराने में ट्रंप की मदद करने के लिए उन्हें सार्वजनिक किया।
रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और आइए अब रुख करते हैं भारत का। पाकिस्तान में कथित तौर पर लापता हुए दिल्ली के दो भारतीय उलेमा वापस घर लौट आए हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के प्रमुख मौलाना आसिफ निजामी और नजीम निजामी पाकिस्तान के लाहौर में दाता दरबार दरगाह पर गए थे। उन्हें बुधवार को कराची से भारत वापस लौटने के लिए विमान में सवार होना था, लेकिन इसी बीच उनके लापता होने की खबर आई थी। नाजिम कल निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे तो उन्होंने बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से बात की।
सबसे पहले कैसे हैं आप अभी?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कहां पर थे आप, कुछ बता पाएंगे?
मैं आज इस वक्त आपके सामने आस्थाने महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब में मौजूद हूँ। मैं तमाम उन मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बगैर किसी तफरीक मजहब मिल्लत के मोहब्बत का इजहार किया। अच्छे और बुरे सभी जगह लोग होते हैं, मगर कुछ खबीस ऐसे भी हैं इनको ये प्यार की बात पसंद नहीं है। इसी तरह एक उम्मत अखबार है जो इस तरह की इन मोहब्बत की बातों को प्रचार नहीं करने देना चाहता और उसके अंदर वो मुख्तलिफ तरीके से झूठे बयान और झूठे फोटो और झूठी चीजों को प्रिंट करता रहता है। मैं इस मौके पर आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, सुषमा जी का शुक्रगुजार हूँ, राजनाथ साहब से और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी दुआ और शुक्रिया अदा करता हूँ।
नाजिम साहब कहाँ थे आप?
जितनी बार आपको मैंने हकीकत बता रहा हूँ आप वो सुने।
आप पर कोई दबाव है?
कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा का करम है। जिन पर बाबा निजामुल साहब की ब्लेसिंग है वो कभी जो है ना उनको कोई नुकसान नहीं।
लेकिन आप कहाँ थे ये तो बताएं, कहाँ पर थे, कहाँ पर थे?
मैंने आपको जितनी बात बताई आप इस पे यकीन करिए।
चचा कहाँ है, आसिफ अली निजामी साहब कहाँ है? वो घर पर पहुँच गए हैं, बहुत खैरियत से पहुँच गए हैं। निजामी जी उन्होंने बहुत उनसे सवाल पूछे गए लेकिन क्लियर जवाब उन्होंने नहीं दिया कि वो कहाँ पर थे इतने दिनों तक। उनको लेकर कई तरह की स्पेकुलेशन भी थी, इस तरह की रिपोर्टें भी आई थी कि वो सिंध के किसी इंटीरियर में गए थे और जहाँ पर ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आई थी कि वहाँ से उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। नाजिम निजामी साहब ने कुछ बातें कही लेकिन बहुत सवाल वो छोड़ गए हैं। उनके जो चचा हैं आसिफ अली निजामी साहब वो घर पहुंच गए हैं उनके यहाँ पर, जो स्थानीय लोगों ने बताया है। क्या वो आगे इस बारे में और बताएंगे? क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी है, वो भी आराम करने गए हैं, बहुत थके हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका?
नसीम मेरा नाम है, इंडिया गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं क्योंकि किसी भी स्टेप को किसी धर्म को ना लेकर के और कोई स्टेप ले लेते हैं वो लोग और अच्छे से हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कोई दूसरे मजहबों में बैठ रहे हैं।
तो ये थे नाजिम निजामुद्दीन, दरगाह वापस पहुंच गए हैं और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। आगे चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के छात्र जीवन की, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं अखबारों पर। प्रभात पांडे स्टूडियो आ चुके हैं।
जी निखिल, जैसे कि अभी हम ये रिपोर्ट सुन रहे थे निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी लौट आए हैं। तमाम अखबारों में जब वो लौटे तो उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जो मुलाकात हुई वो तस्वीरें अखबारों में छपी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है वोडाफोन और आइडिया के मर्जर की। हेडलाइन दी है वोडाफोन एंड आइडिया ज्वाइन टू टेक ऑन जियो, यानी जियो के टेलीकॉम, मुकेश अंबानी की जियो टेलीकॉम आने से जो ये टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर शुरू हुआ है उससे निपटने के लिए ये मर्जर हुआ है।
इसके जियो के ग्राहक
जी अभी नहीं जी निखिल, इसके अलावा पायोनियर अखबार की एक खबर के मुताबिक भारतीय मूल के एक पादरी पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। अखबार के मुताबिक ये एक नस्लभेदी हमला था। हमलावर ने ये कहते हुए चर्च में पादरी के गले पर चाकू मार दिया कि तुम चर्च में आने के काबिल ही नहीं हो। इसके अलावा पंजाब केसरी के मुताबिक इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक की तकरीबन 19 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी संपत्ति है वो प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर ली है। अमर उजाला खबर देता है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से पहले उसका एक तरह से शुद्धिकरण हुआ, वैदिक मंत्रोच्चार से जो है वो सीएम आवास गूंजा और गंगा जल वगैरह से।
लेकिन वो तो कल आए नहीं, वहां
आए नहीं थे लेकिन पूजा, उनके आने से पहले पूजा पाठ कर ली गई। इसके अलावा नई दुनिया में खबर छपी है कि बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन वो अपने गर्दन में दर्द से परेशान हैं और इसका उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर जिक्र भी किया। निखिल
बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे अखबारों की समीक्षा के लिए। और आदित्यनाथ की बात हो रही है तो आइए कुछ उनके बारे में खबरें हम भी ले लेते हैं। आदित्यनाथ योगी यानी दिल्ली उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद चुने गए। पार्टी संगठन से अलग आदित्यनाथ योगी ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन भी खड़ा किया। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस संगठन का भविष्य क्या है, इसकी पड़ताल की है हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने।
साल 2002 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था तो इसे उन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन बताया था। इस संगठन का काम था राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकना, लेकिन इसके पीछे मकसद कुछ और भी था। गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश लाल बताते हैं।
उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल नेटवर्किंग की थी, जब वो अपनी राजनीति उत्थान में थे या राजनीति उनकी कोई सोच रही होगी तो उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया और नेटवर्क में सर्वाधिक ये देखा गया कि जो कम उम्र के लोग हैं, कम उम्र के लड़के हैं, 22 के, 25 के, 20 के, 28 के, और इसमें सर्वाधिक लोग वही जुड़े रहे हैं जिनके पास कोई रोजी रोजगार का अवसर नहीं है या एक सोच विशेष हिंदू मानसिकता के लोग जुड़े रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहला लोकसभा चुनाव 26,000 वोट से जीता था, लेकिन 1999 में हुए दूसरे चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 7,000 मतों तक सिमट गया। जानकारों का कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी बनाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था। कहा जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी की कार्रवाइयों से उस समय पूरा पूरांचल इलाका सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में आ गया। वाहिनी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और कई जेल भी गए। खुद योगी आदित्यनाथ को 2007 में 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उनके साथ युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री राम लक्ष्मण भी जेल में बंद थे। वो बताते हैं,
2007 में जब एक हिंदू व्यापारी की हत्या हुई थी गोरखपुर के अंदर, तो हम सभी कार्यकर्ता पूज महाराज जी के साथ आंदोलन किए थे, उसका प्रतिकार किए थे। उस दौरान पूज महाराज जी को जेल में डाला गया था और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ जेल गए थे। और 11 दिन बाद पूज महाराज जी की बेल हुई थी, पूज महाराज जी बाहर आए थे और हमारे कुछ कार्यकर्ता 5-6 महीने के बाद आए थे। और लास्ट ईयर में सबसे लास्ट अंतिम हम 2-3 कार्यकर्ता बच गए थे, जिनमें 12 महीने बाद जेल से रिहा हुआ था। और मेरे ऊपर NSA जैसे धारा गंभीर धाराओं में मुझे नियुक्त किया गया था।
लेकिन इन सब के चलते युवा वाहिनी के मकसद को जबरदस्त कामयाबी मिली। इस संगठन के बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ की जीत का अंतर लगातार बढ़ता गया। योगी आदित्यनाथ इस संगठन को अभी तक सांस्कृतिक संगठन ही बताते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान बगावत पर उतरे युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह इस बात को खारिज करते हैं।
अतुल सिंह जी उपाध्यक्ष थे, चुनाव जीते थे, 5 साल तक विधायक थे। योगी कौशलेंद्रनाथ तुलसीपुर से विधायक थे और विश्व हिंदू महासंघ जो हिंदू युवा वाहिनी की मदर कंसर्न है उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो चुनाव लड़े थे और विधायक थे 5 साल तक। और तो और बात छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्य संरक्षक स्वयं है, वो खुद एक सांसद है।
हिंदू युवा वाहिनी का विस्तार राज्य के 40 से भी ज्यादा जिलों तक फैल चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ युवकों की चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते बहुत से लोग निलंबित कर दिए गए और कई जगह की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। उस दौरान योगी आदित्यनाथ से हुई बातचीत में हमने ये सवाल भी पूछा था,
अगर किसी को राजनीति में जाना है तो वह पहले अपने राजनीतिक मंच तलाशें, कार्य करें, वहाँ अपने आप को साबित करें, निश्चित ही पब्लिक मौका देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 5 बार से सांसद हूँ, किसी अन्य संगठन या दल से नहीं।
बहरहाल अब जबकि योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो लोगों के जहन में 2 सवाल आ रहे हैं, क्या उन्हें इस संगठन की अभी भी जरूरत है और बड़ी संख्या में युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और BJP के फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता आदित्यनाथ योगी अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में शर्मीले और बेहद शांत थे? बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ ने कॉलेज के दिनों में ABBP से छात्र संघ चुनाव के लिए टिकट चाहा, जो नहीं मिला। वो चुनाव लड़े और हार गए। योगी के जीवन के ऐसे ही कुछ पहलुओं पर राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट।
मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
इस शपथ को योगी आदित्यनाथ की यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। पहला पड़ाव पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के रहने वाले अजय सिंह बिष्ट का योगी आदित्यनाथ बनना था। यमकेश्वर के पंचूर गांव के आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के 7 बच्चों में अजय 5वें नंबर पर थे। 3 बहनें और 1 भाई उनसे बड़े हैं और 2 छोटे। गांव से स्कूल पास करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार से BSc की डिग्री हासिल की। हालांकि ये काम भी आसान नहीं रहा और इसमें पहली बाधा बनी अंग्रेजी। कॉलेज में उनके सहपाठी रहे हर्षपाल सिंह राणा बताते हैं,
सब हिंदी मीडियम से आ रखे थे, हिंदी मीडियम से एकदम से आके फिर इंग्लिश मीडियम में हमने जब ग्रेजुएशन स्टार्ट करी वहाँ पे 89 में, तो आप हमारे को थोड़ा इंग्लिश थोड़ा टफ पड़ती थी तो हम हिंदी में जो है रेफरेंस बुक्स लेते थे, तो उसका भी हम एक दूसरे आदान प्रदान करते थे, जो मतलब हम लोग थे जैसे योगी जी हो गए, मैं हो गया, एक दो और लड़के थे। और कभी कभी ये होता था जैसे मैं कभी योगी जी के कमरे में चला जाता था, हम वहीं स्टडी कर लेते थे।
राणा बताते हैं कि तब गढ़वाल विश्वविद्यालय में BSc के पहले साल में हिंदी में परीक्षा देने का प्रावधान था, इसलिए अजय और वो 2रे साल में पहुंच गए। इसी के साथ अजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जोर मारने लगी। आज भले ही BJP और ABVP योगी आदित्यनाथ पर गर्व कर रहे हों, लेकिन तब संगठन को उनमें ये संभावनाएं नहीं दिखी थीं। अजय के कॉलेज के समय ABVP के जिला संयोजक रहे डॉक्टर पद्मेश बुडाकोटी कहते हैं कि अजय एक शर्मीला लड़का था और उसकी झिझक कई बार उसे आगे आने से रोकती थी।
वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से यहाँ पर आए थे और पहाड़ की जो हालात होते हैं उसका स्पष्ट प्रभाव उन पर था। वो स्वाभिमानी थे मगर बहुत संकोची। वो कुछ आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनका अंतर्मुखी स्वभाव बहुत बार मार्ग में आड़े आता था।
हालांकि बुडाकोटी ये भी कहते हैं कि अनुशासन और लगन के कारण अजय संगठन का बहुत अच्छा कार्यकर्ता बना। वो अजय के योगी आदित्यनाथ बनने की मुख्य वजह राम जन्मभूमि आंदोलन को मानते हैं। जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में अजय ने खुलकर भाग लिया था। उन्हें ये भी लगता है कि स्कूल के सर्टिफिकेट खो जाने की वजह से गोरखपुर में एमएससी में एडमिशन न मिल पाना भी एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि इसी दौरान वो महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए थे। गोरखपुर में एडमिशन नहीं मिला तो अजय ने ऋषिकेश के कॉलेज में एमएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में रहे और जब महंत ने अपना उत्तराधिकारी बनने को कहा तो पिता ने मना कर दिया।
अवैद्यनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है। घर में टूट जाओ, अपनी माँ से पूछा कि मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, सोचा कि नौकरी करने जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है चले जाओ। लेकिन जब मैंने मुझे सड़क में मिली हो तो मैंने कहा नहीं वहां जाओ, तो उन्होंने कहा मैं जाना है, देखो जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी सहमति नहीं है।
योगी के छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट बताते हैं कि 1994 में संन्यास लेने के बाद योगी कुल मिलाकर 3-4 बार ही घर आए हैं। इनमें से 2 बार 1999 और 2013 में भाइयों की शादी में आए थे और कुछ समय पहले चुनाव प्रचार के लिए यमकेश्वर आने पर भी परिजनों से मिले थे। हालांकि माता पिता के लिए भी उनका अजय अब महाराज जी हो गया है।
राजेश डोबरियाल की ये रिपोर्ट आपने सुनी। आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी छवि को लेकर हुई है। योगी के पुराने बयान और उनकी छवि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। विरोधियों ने इसे लेकर उन पर कई सवाल भी उठाए हैं और कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें छवि बदलनी चाहिए। लेकिन क्या आदित्यनाथ योगी को वाकई मेकओवर की ज़रूरत है? हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने एड और पर्सनालिटी गुरु पीयूष पांडे से इस बारे में बात की।
देखिए, हर चीज जो भी कोई व्यक्ति करता है या पार्टी करती है वो सोच समझ के करती है। शायद छवि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, हो सकता है वो अपनी छवि बदल लें, हो सकता है कि छवि बदलने की जरूरत हो ही नहीं, तो मेरे लिए कहना मुश्किल है।
जिस तरह से नरेंद्र मोदी की भी पहचान एक हार्डलाइनर हिंदुत्व वाले नेता की थी, आपने उनको देखा है और आपने उनकी इमेज बिल्डिंग को लेके काफी काम भी किया है।
3 साल से आपने भी नरेंद्र मोदी को देखा है, मैंने भी देखा है, वो बैलेंस व्यू है। अगर वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि योगी आदित्यनाथ होंगे तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मेरे समझ में ये आता है कभी कभार योगी नाम आता ना आगे तो हम लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं।
राजनीति में जब बड़े पद पे और जिम्मेदारी वाले पद पे आ जाते हैं तो समाज का हर तबका चाहता है कि उसका ख्याल रखा जाए, तो अगर आपको कुछ सलाह देनी हो, मान लीजिए 3-4 चीजें ऐसी जिसको अगर वो ध्यान रखें।
मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि सबको हर चीज स्वीकार नहीं होती। आप और मैं कोई डिसीजन लेते हैं, 4 लोग होते हैं बोलते ये गलत है, 4 लोग बोलते हैं ये सही है। मेरी राय यही है, मिस्टर मोदी का सोचना है, वो बैलेंस सोचना है।
आप जिस तरह से देखते हैं योगी आदित्यनाथ को, जिस तरह की टीवी पे अपीयरेंस है या उनका जीवन में जो अपीयरेंस है, गेरुआ वस्त्र, बाल नहीं है, आजकल का युग है सर, हाईटेक युग की, कैसे जो है जनरेशन नेक्स्ट,
मेरी भी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, कोई मानता नहीं उसको।
नया जनरेशन है जो फास्ट है, टेकी है, उसमें ऐसा नेता कितना एक्सेप्टेबल होगा?
वो उस नेता पे डिपेंड करता है कि वो कैसी बातें बोलता है। द वे आई लुक, कि मेरी मूंछें, मैं गंजा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो योगी आदित्यनाथ अच्छी बातें बोलेंगे तो यूथ भी एक्सेप्ट करेगा।
अच्छी बातों से मतलब
विकास का मतलब है, नए युग का मतलब है, आने वाले युग का मतलब है। अगर वो ऐसी बातें बोलेंगे तो मेरे ख्याल से नया युग एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं करेगा। मेरी लुक से और मेरी बातों से उन दोनों के बीच में एक फर्क है।
अगर आपको दे दिया जाए कि भैया ये योगी आदित्यनाथ हैं और आप देख लीजिए कि इनमें क्या करेक्शन होना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ से यही बोलूंगा कि आप जनता का चुनाव है, मगर ऐसी बात करिएगा जो आज के नव युग को पसंद हो। पुरानी बातें करेंगे तो पसंद नहीं होगा। आई होप ही टॉक्स द लैंग्वेज ऑफ द यूथ, कीप एन ओपन माइंड, द मैन टॉक्स द राइट थिंग्स, एक्सेप्ट हिम। If he doesn't talk the right thing, we can decide later on. But don't decide on him just because he wears saffron clothes and has a shaven head.
पीयूष पांडे से बात कर रहे थे प्रदीप कुमार। भारत प्रशासित कश्मीर में दशकों से जारी राजनीतिक कश्मकश और राज्य में सेना की तैनाती का वहां की संस्कृति, खासकर कला और संगीत गीत पर क्या असर पड़ा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली के 2 फिल्मकारों ने वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हाल ही में दिल्ली में दिखाई गई। कश्मीर में गाए जाने वाले वानवन से लेकर हाल में लोकप्रिय हुए हिप हॉप में ऐसा क्या है जो इसे देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है? सुनिए खास रिपोर्ट।
हमारे
हमारी फिल्म सोर्स के जरिए आर्ट और पॉलिटिक्स का जो एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है कश्मीर में, उस ट्रेडिशन को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार हैं ज़रीफ साहब, जिन्होंने हिस्टोरिकल लडीशा या फिर ऐसे फोक फॉर्म्स इकट्ठे किए हैं जो लोगों की लिव्ड हिस्ट्री, उन्होंने कैसे जिया उस हिस्ट्री को फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर अप अंटिल 1947, औरतों के वन, इन सबको गैदर करके एक हिस्ट्री का एक नया रूप हमारे सामने रखा जो हमने आज तक देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा नहीं है।
लडीशाह जो कलमकार होते हैं वो तो लिखते हैं, मगर इस तरीके से लिखते हैं कोई उन पर गिरफ्त ना हो, कोई सरकार उनके ऊपर ये नहीं कहे ये बागी हैं, इन्होंने बगावत शुरू की, ऐसे अल्फाज में जिसको स्टायर कहते हैं।
फिल्म के एक सीन में ये थे कवि ज़रीफ अहमद ज़रीफ। सार्वनिक कौर और तुषार माधव की फिल्म सोज अ बैलेड ऑफ मेलेडीज़ में चाहे सूत्रधार ज़रीफ हों या अन्य कलाकार, कला और खौफ के रिश्ते की बात हर कोई करता है। इतिहास में झांकें तो भारत के इस उत्तरी हिस्से में सूफियाना मौसीकी का असर मिलता है, लेकिन फिल्म दिखाती है कि समय के साथ लोगों ने मौसीकी में अपनी पसंद भी बदल ली है।
इस्लाम में ये म्यूजिक शूजिक का मामला जो है ये अलव नहीं करता है, मगर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ जब मीर सईद अली हमदानी साहब आए जिनके जरिए से यहाँ का मास कन्वर्शन हो गई, उन्होंने अपने साथ वो सूफियाना मिजाज का जो गाने बजाने का उनका ढंग रंग था उसी को सूफियाना मूसीकी कहते थे। मैं क्या सूफियाना मूसीकी के पैगाम इसको सुनाऊंगा, टासरा रहे है वहाँ चैलेंज की, और सूफियाना मूसीकी अमन सलामती और इंसानियत का सौगात है। MC Gash on the vocals.
I pledge my allegiance to my soil. MC Gash को भारत प्रशासित कश्मीर में हिप हॉप लाने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
कश्मीर को जिस तरीके का जन्नत या पैराडाइज कहा जाता है, हम लोगों ने जिन आर्टिस्ट को अपने फिल्म में फीचर किया जैसे कि MC Gash, वो इस नोशन से, वो इस जन्नत की डेफिनेशन कश्मीर से दूर ले जाना चाहते हैं। हिप हॉप एक प्रोटेस्ट का ऐसा जरिया है जहाँ पे उनकी नियत ये नहीं है कि उनका गाना कितना अच्छा है, उनकी नियत ये है कि उनकी कहानियाँ जो हैं, लोगों की कहानियाँ जो हैं, लोगों का इतिहास और हिस्ट्री जो है, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचें, उसके लिए वो अंग्रेज़ी का जरिया इस्तेमाल करते हैं।
I haven't made a song on anything normal, you know, everything is conflict, you know.
फिल्म में वो बताते हैं कि वो सिर्फ संघर्ष के बारे में लिखते हैं और लाख कोशिश के बावजूद नदियों वादियों खूबसूरती के बारे में उनका कलम कुछ नहीं कह पाता। फिल्मकार तुषार माधव एक और कलाकार का उदाहरण देते हैं।
तो आज की तारीख में जो कश्मीरी आर्टिस्ट्स हम मिलते हैं, वो लोग के लिए बंकर्स, बार्ब्ड वायर, AK-47 बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव्स बन चुके हैं जो अपनी आर्ट में वो पोर्ट्रे करते हैं। जैसे कि हमारे एक आर्टिस्ट शौकत काटजू बोलते हैं कि उन्होंने एक ओरिजिनल बंकर बनाया अपने आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए और उसके थ्रू ये दिखाना चाहा कि कैसे कश्मीर का लैंडस्केप रीडिफाइन हो चुका है और वहाँ पे बंकर, AK-47, बार्ब्ड वायर, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, बिसाइड्स वादियाँ, बिसाइड्स वहाँ की नदियाँ और झीलें।
द होल वर्ल्ड हैज गॉन वे बियॉन्ड द म्यूजिक एंड वी लैग बिहाइंड ऑलमोस्ट 100 इयर्स। अभी भी सारंग को बनाने में 6 महीने लगते हैं, मगर दे हैवंट इनोवेटेड, दे हैवंट डन एनी प्रॉपर इनोवेशंस। और रबाब को भी अगर हम देखें, जो रबाब आजकल वही नोट देते हैं टननन टननन टननन, जो आज से 200 साल पहले निकलता था टननन टननन टननन।
फिल्म आईना दिखाती है तो कई सवाल भी उठाती है। फिल्म में स्थानीय पत्रकार अनीस जरगर की ये बात फिल्म खत्म होने के बाद भी साथ रह जाती है, क्योंकि जवाब ना सीधे हैं ना आसान।
हमारा खाना भी वैसा ही है, हम वही 200 साल पुरानी पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं, 20 साल पहले जो था आज भी वही चलता है। सो वी हैव इन अ वे वी हैव बिकम स्टेटस क्वो।
रिपोर्ट सुना रही थी दिव्या आर्य। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने पहली बार माना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार और रूस के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। FBI ने यह भी कहा कि उसे अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ओबामा प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के फोन टैप कराए थे। भारतीय कैबिनेट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू करने के लिए चार नए कानूनों को हरी झंडी दिखा दी है। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि उसके आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया प्रभात पांडे ने और आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।